भौतिक प्रकृति के महत्वपूर्ण होते हुए भी इतिहास आध्यात्मिक सत्ता से ही मूलतः और मुख्यतः संलग्न है। आध्यात्मिक सत्ता को आदि भौमिक सत्ता से व्यावृत कर ठीक तरह समझा जा सकता है। भौतिकता का सार उसके गुरुत्व में होता है, आध्यात्मिकता का तत्व उसकी स्वाधीनता में है। स्वाधीनता ही आत्मा का एकमात्र सत्य है। भूत सत्ता गुरु इस कारण होती है कि वह एक केंद्र की ओर खींचती है। वह अनेकात्मक है और उसके अवयव एक दूसरे के बाह्य होते हैं, किंतु वह केंद्र बिंदु की ओर समाना चाहती है। एकात्मकता उसका साध्य भाव है, आदर्श है। इसके विपरीत आत्मसत्ता स्वकेंद्रित है। इसकी एकता उसके बाहर नहीं है बल्कि उसके अंदर है। भूत सत्ता का तत्व उसके बाहर रहता है, आत्मसत्ता अपने में संपूर्ण होती है। यह स्वात्म विश्रांति ही स्वतंत्रता है। चैतन्य में दो अंश रहते हैं, ज्ञान का विषयी और ज्ञान का विषय। आत्मज्ञान में ये दोनों एक हो जाते हैं, जिसे संभावना और यथार्थ का एक भी कह सकते हैं। इस दृष्टि से विश्व इतिहास को आत्मा का उस प्रक्रिया में उपदर्शन कह सकते हैं, जिसमें वह अपने समान स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करती है। पूर्व के देशों में मानवीय आत्मा की सहज स्वतंत्रता का बोध नहीं था। वे एक व्यक्ति को ही स्वतंत्र मानते थे और इस धारणा से एक तंत्र व्यवस्था में फंसे रहे। यूनानियों ने स्वतंत्रता का पहले पहल परिचय पाया, किंतु वे भी सिर्फ कुछ को स्वतंत्र मानते थे। ईसाई धर्म से प्रभावित जर्मन जातियों ने सबसे पहले मनुष्य की स्वाभाविक स्वतंत्रता का बोध पाया, पहले धर्म में और फिर जीवन के अन्य क्षेत्रों में। इतिहास को इस स्वतंत्रता के बोध का इतिहास कहा जा सकता है। आध्यात्मिक विश्व की नियति विश्व के परिवर्तनों का चरम साध्य और प्रयोजन है। आत्मा का यह स्वतंत्रता बोध ही है। आत्मा अपनी स्वरूप सिद्धि स्वतंत्रता को किन साधनों से साधती है, इस पर विचार करने से एक विरोधाभास सामने आता है। मनुष्यों के कर्म उनकी अपेक्षाओं, आवेगों, वासनाओं और धारणाओं से उत्पन्न होते हैं। स्वार्थ ही मनुष्य के कर्मों का स्रोत प्रतीत होता है। मनीषी अल्पसंख्यक होते हैं, सामान्य जन बहुसंख्यक, और वे अपने स्वार्थों से कर्म में प्रवृत्त होते हैं। स्वार्थ प्रेरणा की प्रबलता इस बात में होती है कि वह न्याय और नैतिकता के बंधनों का आदर नहीं करती। सहज आवेग सब शिक्षा और संयम के बांधों को बाहर ले जाते हैं। इन वासनाओं और उनके वेगों को देखने से लगता है कि इतिहास का संचालन बुद्धि नहीं अबुद्धि करती है। विवेकी और नैतिक व्यक्तियों ने जो दुख और अपमान सहे हैं, उन्हें सोचने से मन में ऐतिहासिक जीवन के प्रति तीव्र विरोध उत्पन्न होता है, किंतु वास्तव में यह एक अदूरदर्शी विचार की दृष्टि है। किसी भी कार्य के संपादन के लिए निरा विचार कितना भी न्यायसंगत हो पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संकल्प, संलग्नता, आंतरिक वेग और निष्ठा की आवश्यकता है। मनुष्य के मन में साध के प्रति इतना लगाव उसमें स्वार्थ की प्रेरणा से बखूबी और अनायास उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब कोई व्यक्ति स्वार्थ की प्रेरणा से कार्य करते हैं, वे एक लक्ष्यभूत विषय के लिए प्रयत्न करते हैं और उनका यह विषयाभिमुख अर्थोन्मुख होता है, न कि स्व अनुमुख। कोई भी बड़ी बात बिना स्वार्थ के सिद्ध नहीं हुई है, और यदि स्वार्थ को समूचे व्यक्तित्व का एक बिंदु पर आवेग समझें तो बिना आवेग के कोई बड़ी बात सिद्ध नहीं हुई है। विचार और मानव आवेग विश्व इतिहास के ताने बाने हैं। उनका संयोग और समन्वय स्वच्छंदता है। स्वच्छंदता का ऐतिहासिक प्रयास कोरा आदर्शवाद नहीं होता है। आदर्श की कोरी भावना में भी एक यथार्थता होती है। वह मानो एक मनोगत बीज है, जिसे यथार्थ की भूमि में बोना आवश्यक होता है। लोग अपने आवेगों के अंतराल से आदर्शों को खोजते हैं। इस प्रक्रिया में आदर्श यथार्थ बनते हैं और यथार्थ आदर्श। स्वार्थानुसंधान में मनुष्य को अपने को भी समझना पड़ता है, दूसरों को भी। अपने को भी समझाना पड़ता है और दूसरों को भी। दूसरों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसे साधारण लक्ष्यों और न्याय की दुहाई देनी होती है। संगठन नितांत स्वार्थ को एक सामुदायिक हित की भावना के अधीन कर लेता है। जीवन और स्वतत्व की सुरक्षा सहज रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ और साधारण लक्ष्य बन जाते हैं। व्यक्तियों के स्वार्थ, आवेग और संकल्प समाज के इतिहास के साधन हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से समान चेतना और हित विकसित होते हैं। जैसे कामावेग कुटुंब की रचना का तत्व बन जाता है, लोभ उत्पादन में अधिक परिश्रम और कौशल के अर्जन का सहायक बन जाता है, ऐसे ही नाना व्यक्तिगत आवेग और संकल्प अपने साक्षात अभीष्ट से बृहत्तर साध्यों को अनजाने में आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य की सामाजिक स्थिति सहज न्याय, बुद्धि, ज्ञान की अव्यक्त प्रेरणा सभी उसके स्वार्थानुसंधान को क्रमशः रूपांतरित करते हैं। उसके कार्यों के परिणाम वे ही नहीं होते जो वह चाहता है। यही विवेक की चातुरी है कि वह अपनी सिद्धि के लिए मनुष्य के स्वार्थों एवं आवेगों को भी प्रचन्न रूप में साधन बना लेता है। व्यक्तियों और समुदायों की प्राण चेष्टाएँ अपने अपने प्रयोजनों को खोजती हुई अनजाने उदात्तर और बृहत्तर प्रयोजनों को सिद्ध करने की साधन बन जाती है। संकल्प के प्रयोजन में जहाँ तक स्वार्थ और आदर्श का समन्वय होता है, वहाँ तक वह स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र संकल्प में चेतना अपने आप को ही संकल्पित करती है। वह अपने लक्ष्य को अपने स्वरूप के अनुकूल निर्धारित करती है। स्वतंत्रता नियंत्रण का अभाव नहीं है, बल्कि आंतरिक नियम की उपलब्धि है। राग तत्व और बुद्धि तत्व के सामंजस्य से ही यथार्थ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। जिस समाज में व्यक्तियों की प्रवृत्तियां समाज के नियमों को आदर्श के रूप में स्वीकार करती है, वहां स्वतंत्रता की यथार्थ में उपलब्धि होती है। कोरा नैतिक आदर्श अति सामान्य होता है और यथार्थ लक्ष्यों को अपने अंदर से खोज नहीं पाता। कोरा कानून एक बाध्यता मात्र होता है जो कि चेतना को बाध्य विवशता प्रतीत होती है। उसमें विशिष्ट विधि निषेध दिए रहते हैं, किंतु उनमें व्याप्त न्याय बुद्धि का साक्षात्कार नहीं होता। कोरी नैतिकता या कोरी न्याय बुद्धि उतनी ही अपर्याप्त होती है जितनी कोरी कानून व्यवस्था और उसके विधि निषेध। सहज सामाजिक संस्थाओं के रूप में ही नैतिकता और नियम में व्यक्त लक्ष्यों का समन्वय मिलता है। इसी से संस्थाओं के सदस्य के रूप में मनुष्य कैसे नियम को प्राप्त करता है जिसे वह अपना समझता है। उसके स्वार्थ यहाँ एक आदर्श के साथ मिलजुल कर चरितार्थ होते हैं। संस्थाओं का विकास मनुष्य की प्रवृत्तियों का आदर्शीकरण और उसके बुद्धिगत आदर्शों का यथार्थीकरण है। संस्थाओं के विकास का सर्वोच्च बिंदु राज्य है। राज्य में स्वतंत्रता एक व्यवस्था के रूप में व्यक्त हो जाती है और उसके अनुसरण से व्यक्ति अपने सर्वोच्च आदर्शों का अनुसरण करता है। राज्य को चरितार्थ, स्वतंत्र अथवा नैतिक प्राणी कहा जा सकता है और राज्य ही इतिहास का मुख्य अधिष्ठान है। वह नैतिकता और कानून, समाज और संस्कृति सभी का उपजीव्य है। विभिन्न ऐतिहासिक राज्य के आदर्श को चरितार्थ करने की प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं हैं। राष्ट्र की आधुनिक धारणा में भावनात्मक तादत्म्य और सामूहिक हित दोनों समन्वित रूप में मिलते हैं। राष्ट्रीय राज्य जिसमें सब व्यक्तियों को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार होता है, राज्य के विकास का सर्वोच्च रूप है। अव्यक्त बुद्धि से संचालित आवेगों और स्वार्थों के अनुसंधान में मनुष्य समाज बनाता है और समाज राज्य के रूप में उसकी अंतर्निहित स्वतंत्रता को उसके समक्ष एक वस्तु सत्ता के रूप में रखता है। राज्य रक्षित समाज में कला, धर्म आदि अन्य सांस्कृतिक रूपों में मनुष्य अपने पारमार्थिक स्वरूप को खोजता है। यह सारी खोज अंततः मनुष्य के आत्मसत्ता के निर्धारण पर आश्रित होती है। उसके क्रम से ही विकसित होती है। जो बात दर्शन में बुद्धि अकालिक रूप से प्रत्यक्ष करती है, वह इतिहास में काल क्रम से मूर्त होती है। इसका निरूपण ही इतिहास दर्शन है। अधिकांश इतिहासकार एक जीवित दायरे के अंदर तथ्यों की छानबीन करते रहते हैं। वे अपने इतिहास निरूपणों को मानवीय जीवन, विचारों और मूल्यों के बृहत्तर संदर्भ में एक अर्थपूर्ण विवरण के रूप में नहीं रख पाते हैं। दूसरी ओर दार्शनिक विचारक, कला, धर्म आदि के अन्वेषक, जो मनुष्य की अर्थ प्रयेषणा की मीमांसा करते हैं, वे उसकी उपलब्धियों को मनुष्य के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में बोधगम्य रूप से नहीं रख पाते हैं। मानव जीवन को ठीक तरह से समझने के लिए एक ओर उसके अंतर्निहित विचारों और आदर्शों को समझना आवश्यक है, दूसरी ओर उसकी बदलती हुई परिस्थितियों को, उसके यथार्थ के दबावों को समझना आवश्यक है। हेगेल में इन दोनों पक्षों का, जिन्हें तथ्यात्मक और विचारात्मक, ऐतिहासिक और दार्शनिक कह सकते हैं, एक अपूर्व समन्वय मिलता है। हेगेल के पहले न किसी दार्शनिक को इतना इतिहास का ज्ञान था, न किसी इतिहासकार को इतने दर्शन का ज्ञान। हेगेल धर्म, दर्शन, कला, नैतिकता, कानून, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, इन सबको उतनी ही बारीक समझ से परखते हैं जितनी समझ से वे विशुद्ध तर्क, मनोविज्ञान, अध्यात्म विद्या को। वे विचारों को सत्ता के संदर्भ में और सत्ता को विचारों के संदर्भ में रखकर दोनों को ही मूलभूत मानवीय प्रेषणा के बढ़ते हुए चरणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके निरूपित इतिहास में बहुत सी कमियां और त्रुटियां संभव है, और सबसे बड़ी यह है कि वे स्वयं अपनी दृष्टि को इतिहास की अंतिम दृष्टि के समान मान लेते हैं, किंतु उनके इतिहास दर्शन का उद्देश्य अवश्य ही श्लाघनीय है। हम सभी चाहते हैं कि इतिहास में युक्तियुक्तता को देख सके, उसको एक सार्थकता के सूत्र में पिरो सके और मनुष्य की आदर्श खोज की और इतिहास को विमुख अथवा तटस्थ मानने के विचार को दूर रख सके। इस प्रकार के प्रतिपादनों में हेगेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हेगेल के परवर्ती विचारकों में जिन्होंने उसका विरोध किया है, वे भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके हैं। हेगेल की यह मूलभूत मान्यता है कि यथार्थता और युक्तियुक्तता एक ही बात है, ज्ञान और वास्तविकता एक दूसरे की ओर निरपेक्ष नहीं है। यह साधारण विश्वास कि वास्तविकता एक भौतिक प्रकृति के रूप में एक बाह्य सत्ता है और ज्ञान मन के अंदर उसका एक अधूरा प्रतिबिंब है, जिसकी उत्पत्ति और सत्य बाहरी वस्तु जगत के कार्य कारण व्यापार पर निर्भर करता है, प्रचलित होते हुए भी नासमझदारी और अज्ञान का परिणाम है। प्रकृति और सत्ता, अंदर और बाहर का भेद, कार्य कारण भाव, यह सब ज्ञान के बाहर के स्वतः सिद्ध पदार्थ नहीं हैं, बल्कि ज्ञान की ही कल्पनाएं हैं। ज्ञान में अप्रमाणिक और प्रमाणिक का भेद उसके अपने अंदर के अधूरेपन और विसंगति के आधार पर तय होता है। वास्तविक और अवास्तविक का भेद प्रमाणिक और अप्रमाणिक ज्ञान के आधार पर होता है। इसीलिए हेगेल का कहना है कि जब किसी विषय में बुद्धिगम संगीत संगति न प्रतीत हो, तो हमें यह मानना चाहिए कि वह विषय अभी पूरी तरह सच्चा नहीं है और उसकी अवास्तविकता का ज्ञान का बोध ज्ञान को वास्तविकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। सामान्य लोग जब अपने विचारों को यथार्थ के अनुरूप नहीं पाते तो विचारों को दोषी ठहराते हैं। अपनी बुद्धि पर भरोसा न कर अपनी इंद्रियों की सूचना पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग सदा ही यह मानते रहेंगे कि सूर्य और चंद्रमा चलते फिरते छोटे छोटे गोले हैं। जैसे मनुष्य के ज्ञान का विकास होता है, वह प्रत्यक्ष प्रतीतियों को बुद्धि के द्वारा सुधारता है। वह अप्रत्यक्ष बुद्धि गोचर नियमों से प्रत्यक्ष जगत को समझता और बदलता है। मूल ज्ञान के क्षेत्र में यह और भी स्पष्टता से देखा जा सकता है। हम अपने नैतिक विश्वासों के अनुसार नई रचनाएं करते हैं, अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार जीवन का उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं। जब यथार्थ और आदर्श में भेद प्रतीत होता है, तो विवेकी पुरुष आदर्शों को न छोड़कर यथार्थ को दूसरी और एक गहरे अर्थ में अवास्तविक मानता है। उसकी प्रेरणा होती है उस अपारमार्थिक यथार्थ को या आदर्श के अनुसार फिर से गढ़ने की। हेगेल के इस बुद्धिवाद विज्ञानवाद और यथार्थवाद में यह अंतर निहित है कि सत्ता, ज्ञान और मूल्य तीनों एक ही आत्मज्ञान रूपी अखंड परमार्थ के अंतर्गत विभेद हैं। सत्ता उसका विषय पक्ष है, ज्ञान उसका विषयी पक्ष है और मूल उसके तादात्म्य की पहचान है। जिस समय विषयी विषय के रूप में अपने को पहचानता है वही उसकी मूल बोध अथवा स्वतंत्रता बोध की अवस्था है। सत्ता ज्ञान की विषयता है, मूल उसका आत्म परिज्ञान। सभी खंड ज्ञान खंड और अनंत आत्मज्ञान की अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए सभी खंड ज्ञानों में अपने अधूरेपन का एहसास अंकित रहता है और उसे उत्तीर्ण करने की प्रेरणा रहती है। यही आत्मज्ञान की प्रेरणा है अथवा ज्ञान की स्वात्म संपूर्णता की ओर प्रेरणा है। इसीलिए ज्ञान सदा आत्मनिषेध के द्वारा अपनी अखंडता या सीमितता को दूर करना चाहता है। निषेध को हेगल ने यथार्थ का हृदय कहा। ज्ञान के अंदर यह निषेध की प्रक्रिया ही उसकी तार्किक द्वंद्वात्मकता है। शुद्ध विचार के प्रतियोगी के रूप में शुद्ध सत्ता का उदय इसी द्वंद्वात्मकता का व्यापार है। इसी कारण प्रकृति की जड़ता आवश्यक रूप से चेतन मन की अपेक्षा करती है और सभी खंड सत्ताएं नष्ट हो जाती हैं। मनुष्य की आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्ति के अंदर अव्यक्त और अखंड आत्मज्ञान का अनिवार्य आकर्षण है। विश्व और उसका इतिहास आत्मज्ञान का ही विवर्त है। विचारगम तत्वात्मकता और क्रियात्मक वर्तमानता का हेगल सत्य या परमार्थ के दो अधूरे पक्ष मानते हैं। इन दो पक्षों का समन्वय तत्व को यथार्थता और सत्ता यथार्थ को तात्विकता प्रदान करता है। यह समन्वय ज्ञान में होता है और जिस अंश में यह संपन्न होता है उसी अंश में ज्ञान पूर्ण होता है। तार्किक विकास, प्राकृतिक विकास और ऐतिहासिक विकास क्रमशः तत्व यथार्थ और सत्य के स्तर पर संपन्न होते हैं। मानवीय अनुभूतियों में ही सत्य की दृष्टि होती है और यह उसी क्रम में होती है जो क्रम सामान्यकारिक रूप में विशुद्ध तर्क उपलब्ध करता है। हेगेल की इतिहास की व्याख्या स्पष्ट ही उसकी विश्व की दार्शनिक व्याख्या पर आधारित है। हेगेल के बुद्धिवादी, विज्ञानवादी, आदर्शवादी धारणाओं को स्वीकार करना एक विशेष दार्शनिक दृष्टिकोण को स्वीकार करना है। इतिहासकार के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि वह किसी विशेष दर्शन का अनुसरण करे, किंतु क्या मानव जीवन या इतिहास की व्याख्या बिना किसी भी दर्शन को स्वीकार किए संभव है? साधारण तौर से इतिहासकार जिस लोक सिद्धि व्यवहार बुद्धि को अपनाते हैं वह अपने युग दर्शन से अप्रभावित नहीं होती। मध्यकाल में प्रत्यक्ष का विश्वास धार्मिक श्रद्धा के अविरोधी रूप में स्वीकार किया जाता है। ईसा मसीह के अनुयायियों ने आंखों देखा हाल लिखने में चमत्कारों का वर्णन किया है। मध्यकालीन इतिहासकार इस साक्ष्य को तथ्य के रूप में स्वीकार करते थे और उन्हें उनमें कोई दार्शनिक दुराग्रह नहीं दिखता था। आजकल का सामान्य प्रत्यक्षवादी विचारक भौतिक विज्ञान की दृष्टि का अनुसरण करता है और इस तरह के विवरण को प्रत्यक्ष मूलक न मानकर श्रद्धा मूलक मानता है। जो एक के लिए प्रत्यक्ष है वह दूसरे के लिए कल्पना है, क्योंकि क्या संभव है क्या संभव इस धारणा में मौलिक भेद हुआ करता है। सामाजिक और राजनीतिक दृष्टियों के प्रति अधिकांश इतिहासकार कभी भी तटस्थ नहीं रहे हैं। व्यक्तिवादी, समाजवादी, साम्यवादी एवं अन्य मतावलंबी इतिहास की घटनाओं का चयन और अनुव्याख्यान विभिन्न रूप से करते हैं और इस भेद का मूल उनका दृष्टि भेद है। भले ही हम हेगल के अत्यंत साहसिक दार्शनिक अभियान के सहयात्री बनना नहीं चाहें, किंतु हमें यह स्मरण रखना होगा कि हम अपनी ऐतिहासिक व्याख्याओं में भी किसी न किसी दार्शनिक अभियान की छिटपुट और प्रचलित उपलब्धियों का सहारा लेकर ही आगे बढ़ पाते हैं। स्वयं हेगल का कहना है कि इतिहासकार के लिए इतना ही अभ्युपगम पर्याप्त है कि इतिहास की घटनाओं में बुद्धिगोचर सार्थकता है। जहाँ तक इतिहास एक विद्या है, इस प्रकार के अभ्युपगम को नकारा नहीं जा सकता। यह बात दूसरी है कि हम अपने ज्ञान भेद से सार्थकता को कैसे परिभाषित करते हैं। जो इतिहास को प्रकृति राज के ही अंतर्गत मानते हैं, वे उसमें कार्य कारण भाव को ही सार्थकता का पर्याप्त सूत्र समझते हैं, किंतु उन्हें यह मानना पड़ता है कि न तो वे अपने समूचेपन में इतिहास का कोई नियत विश्व है, न उसकी कोई अपनी विशिष्ट प्रक्रिया। किसी भी इतिहासकार के लिए यह स्वीकार करना कठिन होगा। उसे हेगल की दो और बातों को मानने से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ऐतिहासिक प्रक्रिया का वैशिष्ट उसके विकासात्मक होने में है, दूसरा उस विकास को समझने के लिए उसमें मानवीय विचारों के द्वारा अदा की गई भूमिका को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस समय हेगेल ने विकास के तत्व पर जोर दिया था, उस समय प्राणी विकास का सिद्धांत अभी अविदित था। डार्विन के बाद के युग में प्राकृतिक विकास के विज्ञान सम्मत होने के कारण प्रत्यक्षवादी इतिहासकार भी मनुष्य के इतिहास में विकासात्मकता का अनुसंधान करते हैं। हेगेल का कहना है कि मानवीय विकास के पीछे मनुष्य के विश्वास रहते हैं, जिन्हें वह सत्य समझता है। मनुष्य विचारशील आदर्श गवेशी प्राणी है। वह अपनी अवस्था और व्यवस्था को अपने विचारों और आदर्शों के अनुरूप बदलता रहता है। हेगेल के विचारों और व्यवस्थाओं के इस अंतःसंबंध को महत्वपूर्ण बताया है। जैसे उन्होंने विचारों का इतिहास लिखा है और दर्शन के इतिहास की नई विद्या को जन्म दिया है, ऐसे ही उन्होंने इतिहास के परिवर्तनों में विचारों का महत्व बताकर इतिहास दर्शन की विद्या को जन्म दिया। इसके विरोध में यह प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य निरा बुद्धिजीवी मानसिक प्राणी नहीं है, वह एक शरीर भी है जो कि प्राकृतिक प्रवृत्तियों से अबुद्धिपूर्वक प्रेरित होता है। इतिहास में यदि कहीं कहीं बुद्धि का हाथ और विजय दिखती है, तो अक्सर मुंह और अज्ञान का पलड़ा भारी नजर आता है। हेगेल ने इस आपत्ति का उत्तर अपने प्रसिद्ध विवेक के चातुर्य के सिद्धांत से दिया है। क्योंकि मनुष्य का अंतः सत्व बुद्धि प्रधान है, भले ही उसका व्यापार अव्यक्त हो, इसीलिए मनुष्य की अन्य सभी प्रेरणाएं उस अव्यक्त बुद्धि प्रेरणा की साधन बन जाती है। मानव जीवन में बुद्धि का प्रशासन और अंतिम विजय इस बात से निश्चित है कि बुद्धि ही परमार्थ है। हेगेल का यह दार्शनिक एकांतवाद सबको रुचिकर एवं स्वीकार न प्रतीत होगा, किंतु उसमें बौद्धिक आशावाद का प्रकर्ष निसंदेह देखा जा सकता है। इतिहास को विचारा आश्रित विकास मानने के साथ साथ हेगेल का यह कहना था कि इस विकास का क्रम द्वंद्वात्मक होता है। हेगेल के इतिहास दर्शन को द्वंद्वात्मक आदर्शवाद कहा जाता है। विचारों में जो आत्मबोध द्वारा प्रगति का क्रम है, वैसा ही क्रम हेगेल इतिहास में देखना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास में भी संस्थाओं और विचारधाराओं की अपूर्णता और एकाग्रता उनके संघर्ष, अतिक्रमण और समन्वय का कारण बनती है और बहुधा परिस्थितियां विपरीत अवस्था में बदल जाती हैं। तो भी इतिहास में द्वंद्वात्मकता को यदि एक प्रकार की पारस्परिक सापेक्षता या प्रतीत्य समुत्पाद कहें, तब तो वह ठीक लगता है, किंतु ऐतिहासिक द्वंद्वात्मकता में नितांत तर्क सारूप्य समझना एक भ्रांति है। विचारों, आदर्शों, मूल्यों की द्वंद्वात्मकता विचार के स्तर पर उनकी संभावनाओं की निरी आकारिक द्वंद्वात्मकता होती है। इतिहास के स्तर पर बुद्धिगत संभावित आकारों को मूर्त रूप देकर परखा जाता है। इस तरह इतिहास में वैचारिक द्वंद्वात्मकता द्विगुणित हो जाती है। एक ओर विचारों की आकारिक द्वंद्वात्मकता, दूसरी ओर विचारों और उनके कार्यान्वयन व्यन एवं रूपान्वयन की। जहां विचारगत द्वंद्वात्मकता तार्किक प्रसंग उत्पादित करती है और अभ्युपगत निषेध एवं निषेध के निषेध के द्वारा प्रवृत्त होती है, इतिहासगत द्वंद्वात्मकता में आदर्श की विभिन्न अभिव्यक्तियों के रूप प्रभेद भी संग्रहित होते हैं। हेगेल ने इस द्विरूपता की ओर ध्यान नहीं दिया है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि जब वे इतिहास में तर्कोचित द्वंद्वात्मकता का प्रतिपादन करते हैं तो मानो वे अपनी मूल अवधारणाओं को खींच तान कर तथ्यों पर बैठाते हैं। इस प्रकार के असंतोष को क्रोचे ने अपनी पुस्तक हेगेल में क्या जीवित है क्या मृत में व्यक्त किया था। उनका कहना था कि हेगेल ने विरुद्ध और अभिन्न के अवधारणाओं के सार्थक भेद को नज़रअंदाज कर एक में मिला दिया है। विभिन्न रूपों के द्वारा आदर्श की ओर उपसर्पण वही नहीं है जो तर्क में विरुद्ध रूपों के द्वारा सत्य का निर्धारण। इस भेद के वास्तविक कारण का ऊपर निर्देश किया गया है। शुद्ध वैचारिक परख आकारिक होती है और आकार समान रूप होते हैं। इतिहास में वे विशेषों के द्वारा व्यक्त होते हैं और यह अभिव्यक्ति सामान्य और विशेष के संबंध के कारण ही अनेकधा हो सकती है। दूसरे हेगल के समान में विशेष के अंतर्भाव के सिद्धांत के बावजूद विशेष समान में विशेषतया क्रोडीकृत नहीं होते। यही कारण है कि मानस को उन्हें व्यक्त रूप में देखने की आवश्यकता होती है। यदि विचार गोचर तत्व यथार्थ के समान ही समृद्ध होती तो उसमें उसे व्यक्त वस्तु भाव देना ही निरर्थक होता। वैचारिक तत्व अनुभव की समान संभावनाओं का ही व्यक्त करते हैं। यथार्थ का स्वरूप अनुभव गोचर ही होता है। स्वयं हेगल ने यह स्वीकार किया है कि विचार का अंतिम तत्व आत्मज्ञान का प्रत्यय है। इस प्रत्यय की अभिव्यक्ति ही अनुभव है, किंतु अनुभव के प्रत्यय से अनुभव गोचर सत्य का पता नहीं चलता। यह सही है कि हेगल के अनुसार सत्य अवाच्य या अविचार्य नहीं होता, किंतु यदि अनुभव को आत्मज्ञान का आवश्यक विकास माना जाए तो उसकी सहायता के बिना विशुद्ध विचार का अर्थ ही क्या होगा। अनुभव और इतिहास का अर्थ समझते हुए भी हेगेल की चिंतन धारा पुराने अमूर्त बुद्धिवाद की सीमाओं को पूरी तरह से लांघ नहीं पाई है। वरना इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस आत्मज्ञान के प्रत्यक्ष में तर्कशास्त्र का अंत होता है वह मूल मीमांसा का श्री गणेश मात्र है। मूल्य बोध के आकारों का परामर्श अनुभव की आलोचना के द्वारा ही संभव है। हार्तमान ने अपने आचार शास्त्र में इस तथ्य को कांटीय दर्शन के परिपेक्ष में इस रूप में रखा है कि यद्यपि मूल अनुभव संरचनाओं में व्यक्त होते हैं उनके स्वतः सिद्धाकार अनुभूति की आवश्यक प्राकल्पनाएं हैं। हमें इस प्रकार के मत में एक तार्किक गौरव प्रतीत होता है और वह कांटीय दर्शन के प्रतिभास और परमार्थ के द्वैत से ग्रस्त है। वस्तुतः मूल का विषय आत्मज्ञान सापेक्ष है, केवल ज्ञान सापेक्ष नहीं। आत्मज्ञान के विषय का ज्ञान केवल आत्मज्ञान के तत्व के ज्ञान से नहीं हो सकता। निष्कर्ष: हेगेल की इतिहास विषयक एक विशेष दृष्टि थी। आदर्शवाद तथा यथार्थवाद दो परस्पर विरोधी दार्शनिक सिद्धांत हैं। यथार्थवाद की मान्यता है कि बाहरी प्राकृतिक सत्ता ही वास्तविक सत्ता है और चेतना उसकी उपज है और उसे प्रतिबिंबित करना ही इसका कार्य है। इसके विपरीत आदर्शवाद की मान्यता है कि चेतना ही सत्य है और वह जगत इसकी कल्पना है। ज्ञान चेतना का लक्षण है। इसमें जो प्रामाणिक और अप्रामाणिक सत्य और भ्रांति का भेद होता है उसका आधार इसे इसके अपने ही भीतर सूत्रों की आपसी संगति और असंगति होता है। कोई बाह्य वास्तविकता से वह नहीं आता। इसी मान्यता के अनुसार इतिहास विषयक आदर्शवादी दृष्टि यह है कि इतिहास प्राकृतिक मनुष्यों के आवेगों स्वार्थों आदि से प्रेरित कार्यों और घटनाओं का क्रम नहीं होता, बल्कि ज्ञान विवेक और मूल्यात्मक अर्थों के बोध के विकास का क्रम होता है। हेगेल के अनुसार ज्ञान अपने स्वरूप में ही द्वंद्वात्मक है। एक प्रतिज्ञा स्थापना को ठीक तरह समझने के लिए उसकी प्रतिस्थापना की जाती है और तब उस प्रतिस्थापना का निराकरण किया जाता है। इस तरह यह तीसरी प्रतिज्ञा या स्थापना में इन दोनों का समावेश रहता है। मूल स्थापना उसका निषेध और इस निषेध का निषेध जिनमें प्रथम दोनों का संश्लेषण होता है, यही विचार या ज्ञान की द्वंद्वात्मकता है। हेगेल की मान्यता है कि इतिहास मनुष्य मूलक होने से और मनुष्य की विशिष्टता बुद्धि या विचार होने से इतिहास भी इसी द्वंद्वात्मकता के अनुसार अग्रसर होता है। यह पहली दृष्टि में बड़ी विचित्र बात लगती है, क्योंकि एक तो मनुष्य केवल विचारशील ही नहीं, राग द्वेष लोभ मोह उसके प्रमुख प्रेरक होते हैं। आदर्शों का अनुसरण भी वह उनमें आसक्ति होने पर ही करता है और इतिहास उसके कार्यों और प्रयोजनों का ही अनुक्रम होता है, न कि तर्क वितर्क निगमनात्मक अनुक्रम। इस पर हेगेल का उत्तर है कि यद्यपि मनुष्य के कार्यों में ये सब तत्व रहते हैं, किंतु ये तत्व इतिहास नहीं बनाते, क्योंकि उनमें कोई विकास की संभावना नहीं रहती, ये केवल विचार और विवेक के उपकरण बनते हैं। यूँ भी कहा जा सकता है कि जहाँ तक ये विचार से शासित होकर उसके उपकरण बनते हैं, वहीं तक ये इतिहास बनाते हैं। द्रष्टव्य है कि विचार अपने आप में अति समान तत्व है, इसे अपनी पूर्णता पाने के लिए अनुभव और क्रिया के लोक में उतरना पड़ता है। उदाहरण के लिए, नैतिक विचार नैतिक कर्म के बिना किसी काम का नहीं होता। दूसरी ओर अनुभव और कर्म विचार के बिना लक्ष्य से रहित होते हैं। इस प्रकार कर्म को एक संहति और दिशा विचार से मिलती है और तभी वह इतिहास का रूप ले पाता है। विचार समन्वित कर्म अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए संस्थाओं का रूप लेता है और संस्थाएं समाज का। विचार से अनुप्रविष्ट मानव समुदाय ही संस्था और समाज है और इन संस्थाओं और समाजों की क्रियाओं और घटनाओं का क्रम इतिहास। विचार से अनुप्रविष्ट होने से ही ये क्रियाएं और घटनाएं अर्थवान और ज्ञानवान बनती है और इतिहास तभी एक विद्या कहा जा सकता है जब वह ज्ञान का विषय हो सकता हो। समाप्त।